Now, let's do an exercise. If I tell you, go to the front door of your house, or flat, or apartment. Open the front door, go inside, go into the living area, now walk towards the dining area, walk to the kitchen. Right? Every one of you did that with your eyes open. Nobody closed your eyes. Because you are experiencing something, you are going through something which is factually correct. If I now told you, imagine and go into the Disney World and construct something, you will all close your eyes. Because then you are imagining something that you are constructing. So when we are meditating, something, we bring ourselves into soul consciousness. That means we are reminding ourselves that I am a soul, a point of light, like a shining star. Only I can't see it. We talked about that this morning. But I am here. I am a soul, a point of light, like a shining star. I control the body and not the other way around. I am in charge of the body. Right? Because we've forgotten that we are souls entering bodies and not bodies that has a soul. So, when you are doing that, this is when it's automatic that when you are becoming soul conscious, and you will need to practice this often. You have to remind yourself, who am I? I'm a soul. I'm a point of light. I control this body. I'm in charge. I'm like a point of light. Shining star. Okay? Which is true, but you can't see it with your eyes. So you have your eyes open. Okay? So that is what you should practice, and then tomorrow we will close this and say, what is it that you close with this? But in the beginning, that's why when I was sitting here, I sit here with my eyes open. I'm now in soul conscious state because I practice, so I'm used to it. In 1 second, I'm now soul conscious. But you also practice this, that you are a soul, a point of light, like a shining star. You are in control of your body. This is soul consciousness. If you practice this, this will give you a lot of peace. Just this, to be in a state of soul consciousness will give you peace. You practice this. More and more and more you'll get used to this. With your eyes open, somebody was saying he's meditating when he's driving. Where is he? Someone, he's the director of the bank. The bank? What's that movie? The bank, yeah, the bank. So, it's okay that when you are driving, when you are cleaning, when you are doing anything, you can be in the state of soul consciousness. And the more you do that, the more peace and quiet and control you will get. Okay? You experiment with this. More and more and more. Become soul conscious. Okay? So, let's practice this for 1 minute while David gives us some nice soothing music. Only for 1 minute. Okay? If you want to close your eyes, you can. But I'm just saying, if you can practice with your eyes open, it'll be good. Okay? Om Shanti. Okay, do you get the idea of what you need to do? Just need to become soul conscious. Because for many, many births, we have forgotten that we are not bodies, but we are souls. That we have taken bodies. We have forgotten. So we need to remind ourselves again. Ooh, I'm told I have to speak Hindi. Okay, main abhi Hindi mein bolunga, lekin jaisa aap sunenge, meri Hindi itni achhi nahi hai, kyunki meri vocabulary bahut kam hai. To isliye, in between main English shabd bolun, to mujhe advance mein maaf kar dena. To aaj ka topic hai, the blame game. Blame game, iska arth ye hai, ke hum jo humankind, we love to blame somebody for anything bad that happens to us. Koi bhi cheez hue, pehla sawal hume ye aata hai, ke is ke liye main kisko blame karu. Ye hamara human nature, particularly in ye abhi kalyug mein, straight away hume ye khayal aa jata hai, kisko blame karu. Aur hamare idea mein koi na koi aa jata hai, aapne ye kiya isliye mujhe hua, aapne ye kiya isliye mujhe. To aaj ka ye charcha hum karne wale hain ki blame game ka real reason kya hai aur क्यों ब्लेम गेम ना होना चाहिए. हम कहते हैं कि तीन कार्डिनल रूल्स हैं अबाउट स्पिरिचुअल बिहेवियर. दीज आर ये एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट्स है, ट्रूइज्म, करेक्ट स्टेटमेंट. एक है एवरीथिंग इज साइक्लिकल. आप कोई भी चीज का ख्याल करो तो ये सब चीज साइकिल में जाती है. बर्थ, डेथ, सीजन्स, डे एंड नाइट, रिलेशनशिप. किसी के साथ रिलेशनशिप भी शुरू होता है तो वो रिलेशनशिप भी साइकिल में जाता है. पहला रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है, बॉय मीट्स गर्ल, can't do without you, don't want any of the outside world, बाहर का कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपके साथ. ये relationship builds up better and better and better, बहुत अच्छा हो जाता है. फिर innovation चाहिए, जो नईनता नहीं आती है तो फिर ये S curve ऐसा जाता है, फिर नीचे आएगा. relationship भी थोड़ा कम हो जाता है. वो स्नोरिंग जो पहला था एक पार्टनर का, इतना क्यूट था, और थोड़ी देर के बाद वो इम्पॉसिबल हो जाता है, मैं सो नहीं सकती हूं उनके साथ. तो ये भी रिलेशनशिप. आइडियाज भी बोरिंग हो जाता है, हस्बैंड कहता है वाइफ बोरिंग, वाइफ कहता है हस्बैंड बोरिंग. तो ये सब रिलेशनशिप भी है. ये एस कर्व जब ऐसा नीचे आता है तो हमें इनको इनोवेट करके नया आइडियाज लाना है, न्यू सर्कल. इवन बिजनेस में हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगेन एस कर्व, इसमें एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करते हैं, बहुत सब इसमें पीआर करते हैं, फिर ये इनका प्रोडक्ट लाइफ इधर जाता है. लेकिन जो इनोवेट नहीं किया तो ये इनकी प्रोडक्ट साइकिल भी साइकिल में नीचे चली जाएगी. ये प्रोडक्ट विल बी डेड. बीएसए बाइसिकल्स एंड मोटरबाइक्स कहां है, ये खत्म. ऐसा कितना ब्रांड्स, अभी रिसेंटली कोडाक जिसने डिजिटल फिल्म का इन्वेंट किया, डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया, लेकिन खुद भूल गए कि इनकी प्रोडक्ट लाइन में ये डालना है. तो ऐसा इनोवेशन जब हम नहीं करते हैं, नई चीज, नई इनोवेशन जो नहीं लाते हैं, तो ये एस कर्व नीचे जाएगा। हमारी लाइफ में भी हमें देखना है हम किधर है, हमारे रिलेशनशिप में किधर है, कि ऐसा ना हो कि हम इधर हैं अभी और अबाउट टू गो डाउन। तो हमें इनोवेट करके ये न्यू एस कर्व्स बनाना है। तो ऐसा जब हमने मौका मिले ये वीकेंड जैसा, तो ये वीकेंड हमारे लिए ये टाइम है कि हमें सोचना है हमारे लाइफ के बारे में, क्योंकि उधर हम इतना बिजी हैं कि हमें सोचने का तो क्या, कुछ भी काम करने का, कुछ भी ऐसा टू स्मेल द फ्लावर्स इंग्लिश में हम कहते हैं, उसका टाइम नहीं मिलता। तो हम कोई भी चीज नई नहीं सोच सकते, इनोवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो इधर आपको एक मौका मिला है, टाइम मिला है कि हम जब किसी को भी सुनते हैं तो हम ये इंटरनलाइज करते हैं और हमारी खुद की लाइफ को अप्लाई करते हैं कि मेरी लाइफ में ये क्या अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है कि जो जिसका मैं एडवांटेज ले लूं और कल से इनको अडॉप्ट करूं। कोई भी चीज आपकी अच्छी लगी, आपको अच्छी लगे, तो ऐसा नहीं सोचो कि मैं, मुझे ये अच्छा लगे, मैं इस बारे में सोचूंगा कि सोचूंगी, ये नहीं करो। अच्छा लगे तो अब डिसाइड करो मैं अब से इनको अडॉप्ट कर लूंगा, तो ये आगे बढ़ूंगा। ये जो एस कर्व है ना, इनको स्टॉप करके नीचे ला, नीचे जाने के पहला इनोवेशन करके नया एस कर्व हो जाएगा। ये बिजनेस में हम कोई भी चीज है, इसका आप दो चीज करते हैं। एक, ये हम देखते हैं एस कर्व्स में हम किधर है। सेकंड, हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जस्ट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड। स्वॉट इज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सुना है स्वॉट बारे में? हाँ, तो ये स्वॉट भी एवरी नाउ एंड अगेन हमें बैठ के ये स्वॉट करना है। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज इन द होराइजन क्या है और थ्रेट्स क्या है, क्योंकि हमें हमारा स्ट्रेंथ यूज करके जो भी हमारा अपॉर्चुनिटीज हैं इनको यूज करके आगे बढ़ना है और वो जो थ्रेट्स हैं इनको स्टॉप करना है। ओके? लेकिन ये जब आप स्वॉट एनालिसिस बनाओ तो आपका पार्टनर, युगल, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये आपके खुद के लिए बनाते हो। जो आप को ये किसी को दिखाना है तो आप इनके लिए बनाओगे, आपके लिए नहीं। ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगेगा कि इनको क्या लगेगा जो मैं ये स्ट्रेंथ रखूंगा ये। सो इसलिए किसी को बताना नहीं, आपके खुद के लिए है। हम सब एवरी डे मास्क पहनते हैं, दिखाई नहीं जाता है लेकिन अंदर से हम मास्क पहनते हैं। तो हमारा जो दो लोग हमारे को मुझे सुनते हैं तो इनका रिएक्शन एक है। मेरा मैं कैसा उनके साथ डील करता हूं ये इनके ऊपर डिपेंड होता है कि दो लोग हैं और वो कौन है और मेरा रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है। 10 लोग हैं तो ये मेरा फेस, मेरा मास्क इज क्वाइट डिफरेंट। मैं जो भी बोलूंगा डिफरेंट कहूंगा। इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन के सामने हूं और बहुत सा मीडिया हमारे सामने है तो मेरा मास्क टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है ना, क्योंकि हम अंदर से वी आर नॉट ट्रू टू आवर सेल्फ। जब मैं भी मेरी कंपनियों में मीडिया के सामने बैठता हूं तो मेरा पीआर लोग सब आके कम्युनिकेशन वाले कह जाते हैं प्लीज ये आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और एडलिब नहीं करना। क्यों? कि एडलिब करता हूं तो फ्रंट पेज होता है, क्योंकि आई स्पीक द ट्रूथ। उनको ये नहीं चाहिए। आप देखते हो इधर जो भी बैठते हैं, मैं कि कोई और भी, हमारे पास कोई नोट नहीं है। वी स्पीक फ्रॉम हियर द ट्रूथ। Then you don't need notes. किसके लिए नोट्स चाहिए? जो भी इधर है ये मैं बोलता हूं. तो ये मास्क का हमें ध्यान रखना है कि रियल मैं कौन हूं. स्वॉट एनालिसिस में रियल मैं जो हूं वो आपके सामने आ जाएगा. हमें ये भी डीप इनसाइड जाना है कि रियली रियली मैं कौन हूं. आपको ही मालूम है आप रियल कौन हो और किसी को नहीं मालूम. तो आपको ये जान के इसके बाद एक्शन लेना है कि मुझे क्या इनोवेट करना है कि जिससे मैं आगे बढ़ूं. ओके, ये वन मैन शो मुझे खुद के लिए करना है, किसी को भी दिखाना नहीं है. सो दैट इज एवरीथिंग इज साइक्लिकल. आप सोचो, कोई भी चीज सोचो. मैंने नई गाड़ी लिया, इनका साइकिल शुरू हो गया. ये 5 साल में 2 साल में 10 साल में ये इसकी साइकिल खत्म. वी हैव टू गिव इट अप, है ना. कोई भी चीज आप सोचो, इट्स एवरीथिंग वर्क्स इन अ साइकिल. सेकंड, दूसरा जो ये एक्सियोमैटिक रूल है कि एवरीथिंग इज लॉजिकल. जो कोई आए आके हमें बताए कि ये मैजिक हो गया, ये मिरेकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये वो कोई बाइबल में लिखा है, ये फिर ये वॉटर्स ऑफ द रिवर्स ये पार्ट हो गया और सब लोग पसार हो गए, ये सब स्टोरीज है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ऐसी कोई चीज नहीं है. सब चीज जो भी होती है वो लॉजिकल है. इसका लॉजिकल रीजन है. और हम भी कोई भी चीज देखें, पर्टिकुलरली इन स्पिरिचुअलिटी, नॉट इन रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इज लॉजिकल. वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग के इसका लॉजिकल रीजन या आंसर क्या है. और तीसरा रूल यह है, एक्सियोमैटिक रूल, कि एवरीथिंग इज जस्ट. यू माइट फाइंड दिस, ये आपको शायद मुश्किल लगेगा एक्सेप्ट करने के लिए, कि कोई भी चीज अनजस्ट नहीं है. क्यों? कि हम भगवान को कहते हैं कि भगवान ये तूने मेरे ऊपर क्यों किया, ये क्यों हुआ मेरे ऊपर. ये जो ब्लेम गेम की बात है ना, आपने ये किया इसलिए ये हुआ. तो इसका आज हमारा टॉपिक ये है कि एवरीथिंग इज जस्ट. जो भी मेरे ऊपर हो रहा है ये जस्ट है, इनजस्टिस नहीं है. और इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा. आप सब ने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि देर आर रूल्स ऑफ न्यूटन. न्यूटन का रूल नंबर 3, एवरी एक्शन, इसका प्रिंसिपल नंबर 3, एवरी एक्शन has an opposite and direct reaction. याद है? तो ये रूल हैं, ये हमारी लाइफ में भी लागू पड़ता है. आपको जो मैंने दुख दिया तो मुझे दुख लेना पड़ेगा. मैंने आपको सुख दिया, हैप्पीनेस दिया, तो मुझे हैप्पीनेस आएगी. मैंने पैसा डोनेट किया तो मुझे पैसा आएगा. ये सिंपल 3 रूल्स इज द होल फिलॉसफी ऑफ कर्म. इंडियन सर्कल में टू से दैट इज वेरी इजी, क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड के कार्मिक फिलॉसफी क्या है. लेकिन ये कार्मिक फिलॉसफी हमें मालूम है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन हमें मालूम है, लेकिन हम इधर रख के बैठ गया है, भूल जाते हैं कि ये रियली कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन जब भी आप किसी को भी दुख देते हो उनका रिकॉर्ड हो जाता है और उनका पेमेंट मुझे करना है. आप में से जो व्यापारी हो वो समझते हो, व्यापारी नहीं भी हो तो भी आप समझते हो कि जो मैंने किसी के पास कुछ लिया तो उनका इनवॉइस मेरे पास आने वाला है, वो भूलना नहीं, वो भूलेगा नहीं। तब भी पेमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो इनवॉइस आएगा। लेकिन ये बहुत वास्ट सिस्टम है, ये इसका प्रोग्राम है ऊपर। ये एवरी टाइम हम किसी को दुख देते हैं तो ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो जाता है, और एक दिन इनका डेट का इनवॉइस मेरे सामने आएगा। वो जब आया तब दो रिएक्शन होएगा मेरा, एक कि मैं किसी और को ब्लेम करूंगा, आपके लिए हुआ, आपके वजह से हुआ, आपके वजह से हुआ। दूसरा कि मैं चिल्लाऊंगा, टेबल थंपिंग, ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ। एंड द बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब ये इनवॉइस आया तो सारे व्यापारी के तरह मैंने उनका पेमेंट कर दिया और मैं लाइट हो गया। क्योंकि जब भी हम डेट का पेमेंट करते हैं तो हम लाइट हो जाते हैं। लेकिन जो भी हम सोचते हैं कि ये मैंने दुख दे दिया और मैं इसमें से पास हो गया और सामने कभी मेरे सामने अभी नहीं आएगा, तो ये बात भूल जाओ। ये आपके सामने आएगा और इसको कोई भी और माफ नहीं कर सकेगा। क्यों? कि आप सोचो कि आप बाप हो, आपके पास दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे को दुख देकर कुछ इनके पास छीन लिया और फिर आपके पास आया कि बाबा ये मैंने किया है, मुझे माफ कर दो। वो करेगा? क्योंकि जो वो करेगा तो वो दूसरा बच्चा बोलेगा इनके बाप को कि आपने कैसा जस्टिस किया कि आपने उनने मुझे दुख दिया, मेरे पास कुछ ले गया, आपने माफ कर दिया। ये भगवान भी माफ नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा कि जिनको दुख दिया है उनके पास जाओ, उनके पास माफी मांगो, वो जो माफ कर दे तो ठीक है, नहीं तो ये दुख आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये हमारी सारी जिंदगी का ये रूल है, ये कंटिन्यू होएगा सारी जिंदगी, और नॉट ओनली एक जिंदगी, लास्ट एंड नेक्स्ट। मेरी सारी लाइफ जो इकट्ठा करो तो ये लाइफ का रिजल्ट ये है कि मेरा पास्ट कर्मा मेरी करंट लाइफ है। माय लाइफ लास्ट लाइफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट माय करंट लाइफ इज। जो भी डेट मुझे भरना था, जो नहीं भरा लास्ट लाइफ में, वो ये लाइफ में आया। मेरा जन्म हुआ जिधर मैं मैक्सिमम कर्मा मेरा सेटल कर सकता हूं, उधर मेरा जन्म हुआ। क्लोजेस्ट मेरा रिलेशनशिप है और मेरा कार्मिक अकाउंट है हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फादर, मदर। आफ्टर दैट मेरा फ्रेंड्स, मेरा बिजनेस पार्टनर्स एंड सो ऑन। सो जो भी आपके अराउंड है ये लाइफ में, ये इसलिए है कि आपको इनके साथ कार्मिक अकाउंट है सेटल करने का। ऐसा नहीं है सब कार्मिक अकाउंट्स आर नेगेटिव, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स शिप्स इन द नाइट, नहीं मुझे देना भी नहीं है उनके पास और लेना भी नहीं है, न्यूट्रल। ऐसा भी होता है किसी के पास नेगेटिव होगा, किसी के पास पॉजिटिव। सो इफ मेरी लाइफ अभी जो है वो मेरा लास्ट लाइफ और प्रीवियस लाइफ का रिजल्ट है, तो फ्यूचर लाइफ आपके पास ब्लैंक शीट ऑफ पेपर है, आपकी फ्यूचर लाइफ लिख लो, आपके हाथ में है। आपको फ्यूचर लाइफ जैसा चाहिए ऐसा लिख लो। किसी को दुख नहीं दो, किसी को सुख दो, तो ये रिजल्ट होएगा कि आपकी लाइफ सुख होएगी। ये जो डोनेशन की बात है, आप जो दातार हो तो कुछ भी दातार करो, नॉलेज दातार करो, पैसा दातार, कुछ भी, गुड विशेस, तो इसका रिजल्ट ये आएगा। तो आपका फ्यूचर लाइफ आपका पास अभी अवेलेबल है, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इधर है, लिख लो आपका फ्यूचर लाइफ क्या होने का। पास्ट लाइफ का जो रिजल्ट है उनका आपको पेमेंट करना है। तो ये चिल्लाकर, गुस्से होकर, टेबल थंपिंग करके नहीं करो, और किसी को ब्लेम नहीं करो। आपकी प्रेजेंट लाइफ आपका पास्ट कर्मा का रिजल्ट है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का फॉल्ट नहीं है, ये मेरा है, ये मेरे बच्चे मेरे सामने वापस आया है, इनको मैं डिसोन भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करके अच्छी तरह से ले लूं, ये मेरा है, मैं उनका जो पेमेंट देना है वो दे दूं, कंटिन्यू विथ योर लाइफ। आपकी लाइफ और लाइफ ऑफ पीपल अराउंड यू, सबकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लेम गेम स्टॉप हो जाएगा। ये द होल फिलोसॉफी ऑफ कर्मा मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया। इसका क्योंकि रीइंकार्नेशन में तो हम सब बिलीव करते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई को रीइंकार्नेशन में, इंडिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो रीइंकार्नेशन बिलीव नहीं करे। अभी तो इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड मोर एंड मोर दे आर एक्सेप्टिंग रीइंकार्नेशन। आपको एक बुक मिले, इसका नाम है मेनी मैंशंस, वो एक बुक आप पढ़ो, कि इसमें अराउंड 5,000 केसेस उसने दिया है ऑफ समबडी हु इज लुक्ड एट कार्मिक अकाउंट्स, एंड कार्मिक अकाउंट्स बाय टाइटल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन दिस एंड दैट, ऑल ट्रू अकाउंट्स। ये आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिले तो ये पढ़ो। दिस इज फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज ईस्टर्न वर्ल्ड में हमारे लिए रीइंकार्नेशन एंड सो ऑन इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट नाउ मोर एंड मोर उधर भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कार्मिक अकाउंट। सो हमें अभी मैं क्या फ्यूचर में करूं, मेरा एक्शन, इसका मुझे बहुत क्लोजली देखना है कि कोई भी मैं एक्शन लू इसमें मैं किसी को दुख नहीं देता हूं और किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, पर्टिकुलरली भगवान को ब्लेम नहीं करो, क्योंकि दैट्स द इजीएस्ट। भगवान को ब्लेम करना बहुत इजी है, भगवान ये तूने मेरे ऊपर क्यों किया, ये हमारा बाप है, ये बाप हमारे ऊपर क्यों दुख डालेगा, कभी नहीं डालेगा, कभी नोइंगली क्यों करेगा, अनोइंगली भी नहीं करेगा, बिकॉज वो भगवान है, वो बाप है। तो ये भगवान को भी ब्लेम करने का छोड़ दो, ही ओनली विश इज गुड फॉर यू, ही विल ओनली डू गुड फॉर यू। आप खुद सोचो कि ये किसका एक्शन आपने जो किया है इनका रिजल्ट है, उसका अच्छी तरह से सोचो, बट मोर इंपॉर्टेंटली कि फ्यूचर में किसी को दुख ना दो, क्योंकि इसका पेमेंट आपको करना ही है। ओके, मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, आज हाउ एम आई डूइंग, हाउ एम आई डूइंग, Is it point time?
Yes.
Yeah. Okay. तो ये क्लियर है, ये मैंने बहुत शॉर्ट भी किया है और आपको क्वेश्चन भी होएगा, Again, we can look at the questions again, but a simple karmic philosophy. Very simple karmic philosophy. Or, inka ek aur bhi rasta hai, ke jo hum deep seed stage meditation karte hain, तो ये पास्ट कार्मिक अकाउंट को हम भस्म कर सकते हैं, लेकिन ये दैट इज ऑल्सो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट डीप, एंड ये हमें पहले हमें ये मेडिटेशन, फुल मेडिटेशन हमें सीखना है, इनको प्रैक्टिस में डालना है. मैंने आपको आज फर्स्ट स्टेप दिया. सुबह आप कौन बहन है हमारी जो आपको
श्रेया
आपको लेसन दे रही हैं, इसको आज दिया और कल भी देंगी, और आज के कल हमारी शिवानी बहन भी आपको इन बारे में प्रैक्टिस करवाएंगी, और मैंने आपको भी एक स्टेप दिया है. बिफोर द एंड ऑफ टुमारो हम आपको इनको दूसरे दो स्टेप में आपको आगे ले जाए, बिकॉज दैट बाबा यानी भगवान को रिमेंबर करना, इनके साथ कनेक्शन करना, वो मेडिटेशन का जो रूल है उनको हम फाइनलाइज कर लेंगे. सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए.
वी हैव 5 minutes नाउ ऑफ मेडिटेशन.
Yeah.
And then we'll have a tea break. You may be pleased to hear.
So hum again with your eyes open. Ye socho main kaun hu? Main atma hu. Main idhar mera sthan hai. Main ye body nahi hu. Main atma ye body ka ruler hu. Inko control karta hu. तो ऐसा सोल कॉन्शियसनेस में 1 मिनट बैठो, पावरफुल सोल कॉन्शियसनेस.